ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदिरे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णे सदा उपगते धर्मज्ञान आदिभिः कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुना उदितः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम् स्कंद सात अध्याय क्या आठ श्लोक संख्या 33 32 निकल गए ना। थैंक यू। दियोहा आउटर स्पेस सता बाय हिज हेल्स उक्सिता बाहर फेंका हुआ विमान संकुला। कैंडी लाओ कैंडी। विमानों से पूरे प्रोत्सर्पात स्थान से सरक गया। क्षमा क्षमा पृथ्वी च भी पद अभी अभी पीड़िता भगवान के चरण कमलों के गुरु भार से पीड़ित शैला पर्वत समुद्भेतु ऊपर उठ गया। अनुष्य उस भगवान के रन रनहसा असह्य बल से। तत् तेजसा, उसके तेज से, खम आकाश, ककुबह दसो दिशाएं, नारे जिसे नहीं चमकी। द्योतत् सता उत्क्षिप्त विमान संकुला, प्रोत्सर्पक्ष्मच पद अभिपीडिता, शैला समुपेतु अमुष्य हंससा, तत्तेजसाकं कुकुबा नरेजिरे, द्योतत्सदास उत्क्षिप्त विमान संकुला, प्रोत्सर्पदक्ष्मा च पद अभिपीडिता, शैला समुपेतु अमुष्य हंससा, तत्तेजसाकं कुकुबान रेजिरे, द्योतत्सता उत्सिप्त विमान संकुला, प्रोत्सर्पदक्ष्मा च पद विपीडिता, शैला समुत्पेतु अमुष्य हंससा, तत्तेजसा खं कुकुब नरेजिते। वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा दिवो बाह्य आकाश तत्सटा उनके बालों से, उत्क्षिप्त बाहर फेंका हुआ, विमान संकुला विमानों से प्रेरित पूरित, विमानों से पूरित, प्रोत्सर्प प्रोत्सर्प पता स्थान से सरक गया, क्ष्मा पृथ्वी च भी पद अभिपीड़िता, भगवान के चरण कमलों के गुरु भार से पीड़ित, शैला पर्वत समुत्पेतु ऊपर उठ गया, अमुष्य उस भगवान के रंग हसा असह्य बल से, तत्तेजसा उसके तेज से, खम आकाश कुकुबह दसों दिशाएं, नरे जीरे नहीं चमकी। नृसिंह देव के सिर के बालों से वायुयान विमान बाह्य आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई और उनके असह्य बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। मेरे पीछे दोहराइए प्लीज। नृसिंहदेव के सिर के बालों से वायुयान विमान बाह्य आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई और उनके असह्य बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक से पता चलता है कि बहुत समय पहले आकाश में विमान उड़ा करते थे। श्रीमद् भागवत की रचना 5000 वर्ष पूर्व हुई और इस श्लोक के कथन से सिद्ध होता है कि उस समय उच्च लोकों में तथा अधोलोकों में भी अत्यंत विकसित सभ्यता विद्यमान थी। आधुनिक विज्ञानी तथा दार्शनिक मूर्खतावश यह बताते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व कोई सभ्यता न थी, किंतु इस श्लोक के कथन से ऐसे अटपटे निर्णय निरस्त हो जाते हैं। वैदिक सभ्यता लाखों वर्ष पूर्व विद्यमान थी। वह इस ब्रह्मांड की सृष्टि के समय से ही विद्यमान थी और उसमें सारी आधुनिक सुविधाएं तथा इससे भी अधिक व्यवस्थाएं प्राप्त थी। ओम ज्ञान तिमिरांजस्य ज्ञानांजना सभाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंहदेव के सिंह के बालों से वायुयान विमान बाह्य आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई और उनके असह्य बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादि पाश्चात देशत। तो नरसिंह देव का प्रागट्य का वर्णन है। तो हिरण्यकश्यपु राक्षस की भूमिका निभा रहे हैं और प्रहलाद महाराज एक शुद्ध ऊंचे बड़े चढ़े भक्त की भूमिका यहाँ निभा रहे हैं। तो अनादिकाल से हमने ये अनुभव किया है कि दो भू स्वर्गीय लोके देव असुर एवच विष्णु भक्त भवे देवा आसुर्यस्य विपर्जय। सृष्टि में हमेश दो प्रकार के जीव रहते हैं, एक है देवता और दूसरे है दानव, अर्थात दैत्य और देव। दिति के पुत्र देव और आदिति के पुत्र असुर दैत्य, दिति दैत्य, दिति के पुत्र दैत्य, आदिति के पुत्र देव। तो ये दो प्रकार के जीवात्माएं हमेशा सृष्टि में रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि राक्षस लोग पृथ्वी पर हंगामा मचा रहे हैं, आजकल मचा रहे हैं, अनादिकाल से मचा रहे हैं। और अनादिकाल से भगवान के भक्त भी पृथ्वी पर होते हैं। तो यहां हिरण्यकशिपु राक्षस दैत्य है, दैत्य के पुत्र है दैत्य। तो ये नास्तिकतावाद का प्रचार कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज आस्तिक था। तो हिरण्यकशिपु संड और मर्क नामक दो शिक्षक को पूछते हैं कि प्रहलाद ने ये सब दैत्यों की शिक्षा ली या नहीं ली। तो शिक्षकों ने स्पष्ट बता दिया कि ये तो विष्णु की बात कर रहे हैं जो आपके शत्रु हैं हमेश, और बालक को भी यही शिक्षा दे रहे हैं विष्णु की। तो स्वाभाविक तौर से दैत्य हिरण्यकशिपु को क्रोध उत्पन्न हुआ। तो क्रोध में ये कहते हैं कि तेरी शक्ति तो कहां से ला रहा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये दैत्य राज, उनको दैत्य राज कहते हैं, किंग ऑफ द डीमन, आपकी जहां से शक्ति आती है वहां से मेरी आती है। गुस्से हो जाता, अपनी गोदी से उनको जमीन पर फेंक देता है और क्रोध से अपनी तलवार निकालता है। और प्रहलाद महाराज को गुस्से में कहते हैं, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ मेरे भगवान कण कण में, अणु अणु में है, अनियोणिया महत्व महियात अंडांतरस्त परमाणु जयांतरस्तम, हर जगह कण कण में है, कण के बीच में भी है। तो वो अपने तुरवाल से खंभे में प्रहार करता है तो विक्रम नरसिंहदेव प्रकट होते हैं और युद्ध दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध के बाद नरसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ तब का यह वर्णन है कि नरसिंहदेव के सिर के बालों से वायुयान जो आकाश में वायुयान थे तो वो इधर उधर फेंके गए और गिर गए और भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी ऑफ ऑर्बिट पृथ्वी अपने स्थिति से दोलायमान हो गई और पर्वत गुरु गुरुत्वाकर्षण से नीचे होने चाहिए लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बालों से ये पृथ्वी ऑफ ऑर्बिट हो गए पर्वत ऊपर उछलने लगे। कितना बलवान भगवान का स्वरूप होगा और उनके शारीरिक तेज से समस्त दिशाएं का प्रकाश घटने लगा। भगवान का प्रकाश से सब चीजों का प्रकाश कम होने लगा। तो प्रभुपाद जी परपोट में कहते हैं कि ये विमान इधर उधर बिखरने लगे तो ऐसा नहीं है कि 3000 साल के पूर्व ये सब कुछ नहीं था। तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं 3000 साल के बाद मनुष्य की सभ्यता बढ़ी, मनुष्य कल्चर हुआ, मनुष्य का कल्चर। पहले जंगली मनुष्य थे ऐसा वैज्ञानिक और कई धार्मिक लोग कहते हैं। नहीं, वैदिक संस्कृति अनादि है। मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था आज सुबह तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वैदिक संस्कृति का कोई शुरुआत नहीं है, अनादिकाल से वैदिक संस्कृति चली आ रही है। तो वैदिक संस्कृति में मनुष्य संस्कार संपन्न थे, ऐसा नहीं कि प्रिमिटिव एज जंगली प्राणी जैसा मनुष्य था, सभ्य मनुष्य सभ्यता संस्कृति पहले से अनादिकाल से चली आ रही है। हमारे शास्त्र अनादि है और इन शास्त्रों में सब सभ्य संस्कृति और ऊंचे बड़े चढ़े साधुओं का महात्माओं का महाजनों का वर्णन आता है। स्वयंभू नारद शंभू कुमारो कपुलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलिर्व्यास कीर्वयम इनकी कोई ये सब महाजन ब्रह्मा अनादि ब्रह्मा कितना काल हो गया सृष्टि की शुरुआत सृष्टि की रचयिता सेकेंडरी क्रिएटर सृष्टि के द्वितीय रचक रचना करने वाले ब्रह्मा है ओरिजिनल रचना करने वाले श्री कृष्ण है श्री कृष्ण बलराम चतुर्व्यूह संकर्षण प्रद्युमन अनिरुद्ध वासुदेव सेकंड चतुर्व्यूह then Kanadaksha Vishnu, Garbhadaksha Vishnu, Kshiradaksha Vishnu, Garbhadaksha Vishnu ke Nabhi Kamal mein Brahma, aur Brahma ne ye srushti ki rachana ki. लेकिन उससे पहले द्वितीय ब्रह्मा है, द्वितीय सेकेंडरी क्रिएटर, ओरिजिनल क्रिएटर कृष्ण है. इन हिंदू ट्रेडिशन ये मिस कर देते हैं, भगवान को मिस कर देते हैं. ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक क्रिएटर, एक मेंटेनर, एक एनाइलेटर. यहां से हिंदू लोग अपना ज्ञान शुरू करते हैं. लेकिन उनसे पहले क्या हुआ, ब्रह्मा कहां से आए? मैं प्रभुपाद को सुनता था कल, तो प्रभुपाद जी कहते थे गोरे भक्तों को शुरुआत में 67 में भी लेक्चर करते, तो कहते हैं कि जिनका कोई बाप ना हो, पिता ना हो, वो गॉड है. That is God. जिनका आप आपके पिता के पिता के पिता सबका पिता है, लेकिन जिनका पिता ना हो, that is the God. सिंपल भाषा में जिनका पिता ना हो. तो ब्रह्मा का पिता है गर्भोदक्ष विष्णु, ये पिता है ब्रह्मा के. और विष्णु के आगे जाते हुए एक्सपेंशन है कृष्ण के, जैसे मैंने बताया. तो वैदिक सभ्यता अनादिकाल से शुरू है. विमान, अंतरिक्ष में विमान, ये कोई नई चीज, ये नई शोध को ठीक है हम क्रेडिट देंगे वैज्ञानिकों को, लेकिन कोई नई चीज नहीं. प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसमें आपने क्या नया किया, भगवान कृष्ण छोटे से छोटा मस्किटो से भी, मच्छर से भी छोटा, वेरी वेरी लिटिल जो क्रीचर होता है तो वो फ्लाई कर सकता है. तो ऐसा आप कर सकते हैं वैज्ञानिक लोग, छोटे से छोटा क्रीचर को उड़ा सकते हैं? वेरी डिफिकल्ट. तो महतो मह्यात अनियोनियात महतो मह्यात, तो ये कृष्ण ये क्रिएटर है, दिस इज अ क्रिएटर. लेकिन वैदिक संस्कृति का कोई मूल स्रोत नहीं है, अनादि है. और अनादि काल से विमान भी, पृथ्वी भी, और ठीक है भुक्ता भुक्ता पलिये थे, क्रिएशन टेक्स प्लेस एंड देन एनिहिलेशन एंड प्रलय एंड सर्जन एंड प्रलय होता रहता है. अनादि काल से तो होता रहता है. तो आगे हम देखते हैं कि ये अध्याय में श्रील नरसिंह देव को सब प्रार्थनाएं करते हैं. तो प्रार्थनाएं करते हैं उसमें भी अपनी सक्षमता के मुताबिक सब देवी देवताएं प्रार्थना करते हैं, अपनी चेतना के मुताबिक. तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान प्रार्थना करते हैं, और बाद में चारण और कई कई पितृगण भी प्रार्थना करते हैं. तो अपनी चेतना के मुताबिक प्रार्थना करते हैं. ब्रह्मा ऊंची चेतना है, शंकर भगवान ऊंची चेतना है उस. तो ब्रह्मा से शुरू होता है, देन शंकर भगवान, देन ऋषि मुनि, एंड देन पितृलोक श्राद्ध के बारे में अनुरूप पितृलोक, जो हमारे श्राद्ध के अवसर पर हमारे पुत्रों पौत्रों द्वारा अर्पित बलि को छीन कर खा जाता था, हिरण्यकशिपु और उनके अनुचर। हे प्रभु, आपने इस असुर को मार कर अपने नाखूनों से इसके पेट को चीर करके उसमें से समस्त चतुराई चुराई हुई सामग्री निकाल ली है। इनके पेट में से समस्त श्राद्ध की सामग्री और अपने अपने चेतना के मुताबिक सब प्रार्थना करते हैं। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि प्रहलाद महाराज अंत में शुद्ध भक्त हैं, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो उच्च कक्षा की प्रार्थनाएं। तो सिद्ध लोग प्रार्थना करते हैं, विद्याधर नाग लोग प्रार्थना करते हैं अपनी अपनी चेतना के, मनु प्रार्थना करते हैं, प्रजापति प्रार्थना करते, गंधर्व चारण यक्ष किम पुरुष बंदर लोग वैतालिका से किन्नर लोग जो जिसको हम ईजरा कहते हैं या न्यूट्रल लोग होते हैं, किन्नर लोग अपनी चेतना के मुताबिक प्रार्थना करते हैं। तो विष्णु पार्षद करते हैं और अंत में प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद महाराज उनके गुरु नारद मुनि को मैं कैसे बोल सकता हूँ, और नारद मुनि को पहले प्रार्थना करते हैं, बाद में नरसिंह देव को अपनी पूर्णतया कृष्ण भावना भावित चेतना से प्रार्थना करते हैं। तो नरसिंह देव कहते हैं कि हे प्रहलाद, अन्य पुराण में कि ये आपकी संभ्रम जो वृत्ति है मुझसे आप छोटे गिनते हो, मुझे बहुत बड़े। तो ये ऊंच नीच का भाव छोड़ दो, तयोर वो भाव छोड़ दो, इससे मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। आप बराबरी में बात करो, मेरी बराबरी में बात करो, ये संभ्रम छोड़ दो और मेरे बराबर होके। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि मैं मेरे भक्तों में हृदय के हृदय में हूं और भक्त मेरे हृदय में है, इसलिए संभ्रम वृत्ति आप छोड़ दो। अजितो पी, मैं अजित हूं फिर भी मेरे भक्तों के प्रेम रज्जु भी मैं मेरे भक्तों के प्रेम के रज्जु से बंधा हुआ हूं। आप जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान कहते हैं कि आप जैसे भक्त जो हैं उनके प्रेम के रज्जु से मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए आप मेरे से डरो मत और मैं आपके बराबर हूं। और इस संभ्रम जो चेतना है आपकी वो छोड़ दो और मेरे से बराबरी में व्यवहार करो, तो प्रेम का आदान प्रदान होगा। तो प्रेम का आदान प्रदान के लिए बराबरी जरूरी है। कोई राजा है बड़े सम्राट और कोई स्वीप करने वाली स्ट्रीट लेडी है, तो इन दोनों में प्रेम संभव नहीं है क्योंकि बराबरी नहीं है और हृदय का तारतम्य नहीं है, और तारतम्य नहीं हो सकता क्योंकि बराबरी नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज जो पहली कंडीशन नरसिंह देव बता रहे हैं कि बराबरी में बात करो, संभ्रम अर्थात संभ्रम का शुद्ध हिंदी क्या होगा, यहां कई विद्वान बैठे हैं, संभ्रम अर्थात ओ एन रेवरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं ओ एन रेवरेंस, संभ्रम तो ये छोड़ दो, मेरे बराबर हो जाओ, then we can reciprocate, एक दूसरों का प्रेम का विनिमय शुरू हो। तो प्रहलाद महाराज की चेतना बहुत ऊंची है और नरसिंह भगवान तुरंत पहचान जाते हैं और इसलिए कहते हैं कि बराबरी में मेरे से प्रेम करो। और प्रहलाद महाराज अपने गुरु को कहते नारद मुनि कि भला मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ, तो नारद मुनि का गुणगान गाते हैं, बाद में नरसिंह भगवान का गुणगान गाते हैं। तो मैं यह कथा को विराम दूंगा।